ऐसे गीत जब बजते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे गीत सुनते जाते हैं और आत्मा उन्हीं शब्दों के साथ साथ उस सागर में समाने का अच्छा अनुभव करती है। तो आप सभी सागर में समा के बैठे थे ना, कितना बाबा ने हम सबको ऊंचा बनाया है, महान बनाया है, क्या थे और क्या बनाया है। दिल से बाबा के प्रति वो प्यार अंदर से निकलता है और जब ऐसे गीत का सहारा मिलता है तो और भी ऐसे लगता है जैसे हमारे शब्द गाने वालों ने ले लिए। सभी बाबा के प्यार में समाने का अनुभव तो करते ही हो और वर्तमान समय के हिसाब से बाबा हम सबको कहता है, बच्चे माया की धूप और गर्मी से बचने के लिए छत्र छाया के नीचे रहना। आज के वरदान में सुना ना, तो हम सभी को बाबा ने अपनी छत्र छाया के नीचे रखा है। दुनिया में कितनी भी परिस्थितियां हों, तमोगुणी वायुमंडल है, व्यक्तियों की दृष्टि वृत्ति और कृति सब पतित भ्रष्ट हो गई है, उसके बीच में भी बाबा ने हम बच्चों को एक सेफ्टी का रक्षा कवच पहनाया है। अपनी ही कमजोरियां छत्र छाया से बाहर निकालती हैं और बाबा इस बार भी विशेष इशारा दिया व्यक्त बाबा ने कि इस समय सेफ्टी के लिए दो शब्द याद रखना। एक, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं और दूसरा, बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं। ये दोनों शब्द इतने अच्छे हैं, अगर इसका अनुभव हम सभी चलते फिरते करें तो मैं समझता हूं कि बहुत सी व्यर्थ से बहुत सी बातों से हम बच सकते हैं और जो कार्य असंभव हैं वो भी बाबा के साथ से कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से ऐसे संभव हो जाते हैं जैसे कुछ भी मैंने नहीं किया, बाबा ने अपने आप करा लिया। हर एक के अपने अनुभव इसमें होंगे लेकिन मुझे तो बार बार ये अनुभव होता है, जब भी कभी भी कहीं पर आना जाना होता है तो एक बहुत अच्छी स्मृति सदा काल के लिए रहती है कि मेरे साथ कौन है। साथ साथ का अनुभव, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव एक बहुत ऊंचे नशे में रखता है। अभिमान नहीं आता, मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरी कोई विशेषता है, इसका भी नशा नहीं रहता। लेकिन लोगों को पता नहीं है इनके साथ कौन है, और मुझे अंदर से नशा है कि मेरे साथ कौन है। तो आप सभी, विशेष हमारी टीचर्स बहने आज की क्लास में बैठी हैं, मैं समझता हूँ ये सब प्रैक्टिकल अनुभव आप सब करते होंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया का वायुमंडल आप सभी देखते सुनते हैं, कितना आतंकवाद, कितना भ्रष्टाचार, कितनी प्रकार की तमोगुणी वृत्तियां इस वायुमंडल में फैली हुई हैं, और वे उस वायुमंडल में रह करके आपको सेवा करनी है, उस वायुमंडल में रह करके ऐसे व्यक्तियों को बाबा का संदेश देना है जो पता नहीं किस किस नजरों से देखते हैं, कौन सी निगाहें होती हैं। लेकिन बाबा ने वो शक्ति दी है, वो स्वरूप बनाया है, अपनी छत्र छाया के नीचे रखा है कि अगर कोई ऐसी वृत्तियों से भी सामने आए तो चेंज हो जाए, उसका मन, उसकी वृत्तियां परिवर्तित हो जाएं। लेकिन जितना हम उस स्वरूप में स्थित रहते हैं, जितना हमें भान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति है, जैसे शरीर आत्मा दोनों इतना कंबाइंड है, कोई अलग करना चाहे तो भी अलग नहीं हो सकती। हम लोग अभ्यास ही करते हैं कि हम कुछ समय तो इस देह से डिटैच हो जाएं, फिर भी देह भान अपने बंधन में ले आता, खींचा हो जाता है, कहीं भी जरा दर्द हो, कोई काट ले, कुछ भी हो जाए तो कितना फौरन एक ऐसा लगता है जैसे बहुत इस भान के अंदर आ गई आत्मा। अभ्यास करते भी इतना कंबाइंड हो गई है जो देह को एक सेकंड भी वो भूलती नहीं है, छोड़ती नहीं है। अभ्यास तो हम कर रहे हैं कि इससे हम अलग रहे, देह भान से अलग रहे, शरीर का कोई भी हिसाब किताब आए ऐसे लगे कि ये शरीर भोग रहा है, मैं आत्मा अलग हूँ। लेकिन फिर भी वो भोगना में आत्मा इतनी महसूस करती है कई बार, जो लगता है कि अभी तक मेरा इसमें बहुत अटैचमेंट है, फंसा हुआ हूँ। अब वो अभ्यास तो हम सभी कर रहे हैं डिटैच रहने का, लेकिन कंबाइंड ऐसा हो गया है स्वरूप जो से अलग होना असंभव सी बात है, मेहनत भी इसी में है। और बाबा बार बार कहता, बच्चे यही एक मेहनत है, 5-6 दिन पहले मुरली सुनी होगी, बाबा ने कहा बच्चे एक ही केवल मेहनत है, आत्म अभिमानी बनो, देह अभिमानी बनो, इस मार्ग के अंदर केवल यही मेहनत करनी है। और जिसने ये जितनी मेहनत कर ली उतना वो सहज रीति से कर्म इंद्रियों को जीत लेगा, विकर्मों को जीत लेगा, अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति को प्राप्त कर लेगा, जो उसका लक्ष्य है वो उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो पहला पाठ है वही लास्ट पाठ है, और वही हम सभी पढ़ रहे हैं नंबर वार। कौन कितना इस अभ्यास में रहता है, इस देह से डिटैच रहने का अभ्यास करता है, मैं आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, इस स्वरूप में जो जितना समय स्थित रह सकता है उतना वो कर्म इंद्रिय जीत है, अपने संस्कारों को जीत सकता है, किसी भी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। चार बातों का ध्यान, क्योंकि हम सभी की बहुत ऊंची मंजिल के हम सभी राही हैं। आत्मा को संपूर्ण पावन सतो प्रधान बनाना, अपनी संपन्न स्टेज को प्राप्त करना, देवता बनने के पहले ब्राह्मण सुफरिश्ता बने, विकर्मों पर जीत हो, कर्मातीत स्थिति बने, उस सब के हम सभी राही हैं। हम सबके सामने मंजिल स्पष्ट रहती है ना, यहाँ पहुंचना है, ये गोल है हमारा। उसके लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे मदद करेंगी, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगी? तो पहली बात, एक रेस हम सबकी चल रही है। बाबा कहता है ये अश्व रेस है, जैसे घोड़ों को दौड़ाते हैं ना, और वैसे भी रेस आपने अगर देखी होगी, दौड़ने वाले लोग जब प्राइज जीतनी होती, विशेष नंबर लेने होते हैं, तो उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनका एक साहस किस प्रकार से काम करता है, कोई चीज की परवाह नहीं करते, किधर भी नहीं देखते, कभी रुकते नहीं, बस मंजिल सामने है, पहुंचना है, आगे जाना है, नंबर लेना है। कितने भी सांस चढ़ जाए, हाँफने लगे, कोई रुकावट डालने वाला भी आ जाए, कोई बात भी हो जाए, फिर भी उनको एक ही लक्ष्य है, मुझे नंबर वन जाना है, भागना है, दौड़ना है। तो पहली बात बाबा कहता है, सदा समझो बाबा के इस मार्ग में हम बाबा के बच्चे बने हैं, रेस के अंदर आ गए हैं और ये रेस मुझे करके नंबर वन जाना है। कौन जाएगा, कितने जाएंगे, ये गिनती नहीं करना। ऐसे नहीं बाबा ने पढ़ा दिया तो हम बहुत समझदार हो गए, पास तो आठ ही होंगे, माला तो आठ की है, 108 की है, ऐसे बहुत सारे शब्द बाबा के पकड़ करके कई लोग उसको अलबेलेपन के रूप में उसको यूज करते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं, जो कोई बात में ढीले हैं, कोई न कोई विकारों के संस्कारों के अधीन है, वो बाबा की ऐसी बातों को लेकर के ढाल बना देते, जिसको बाबा कहते हैं ना, दल्लब का तकिया लगा लेते। तो ऐसे शब्द लेकर के ये नहीं सोचना है कि मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ, मैं तो पीछे आया हूँ, मेरे अंदर तो इतनी योग्यताएं ही नहीं है, मैं कैसे हो सकता ऐसा। बाबा कहते हैं रेस चल रही है, जैसे चेयर रेस का बाबा मिसाल देते हैं ना, बच्चे अभी तक कोई सीट रिजर्व नहीं हुई है, बैठते हैं और उठते हैं, फिर भागते हैं, दौड़ते हैं। देखिए रे चेयर रेस, हमारी दीदी जब दादी पिकनिक पर हम सबको ले जाती थी पीस पार्क में या कहीं पर भी, तो चेयर रेस हम जरूर करते थे, सबको दौड़ाती थी, कुर्सियां एक निकाल देती थी, एक आउट हो जाता था हर बार, और लास्ट में जब दो कुर्सी बजती है तो उसके पीछे तीन लोग जब दौड़ते हैं तब पता चलता अभी कौन आगे नंबर बैठेगा। तो बाबा भी कहता है रेस चल रही है, अभी तक कोई सीट फिक्स नहीं है, इसलिए आप बच्चे कभी भी दिल शिकस्त करने वाले संकल्प इमर्ज नहीं करना, अपने आप को इतना अंदर से ऊर्जावान शक्तिवान बनाओ कि रेस में मुझे नंबर वन लेना, पद क्या होगा उसकी चिंता नहीं करो, लेकिन मैं आत्मा अपनी संपन्न संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लूं, मैं बाबा के दिल तक को जीत लूं, भविष्य तक बात की बात है, लेकिन संगम युक्त पर हम बाबा के दिल तक को जीत लें, अपने निमित्त आत्माओं के दिल तक को जीत लें, ये हमारी सबकी रेस होनी चाहिए। और अगर बाबा के दिल तक को जीतना है तो बाबा कहता है इस रेस में लग जाओ। कौन सी रेस करो? आत्म अभिमानी बनने की, इस देह से डिटैच रहने की, बार बार ये रेस है, और जितना समय इसमें कर सकते हो, इसके लिए कोई डिस्टर्ब आपको नहीं कर सकता, कोई बंधन नहीं है, सेवा करो, कितनी भी मेहनत करो, कोई भी स्थूल से स्थूल सेवा भी हो, ये बुद्धि की दौड़ है, बुद्धि की रेस है। सिर्फ अटेंशन का पहरा चाहिए, बार बार जो देह अभिमान में आत्मा आती है उसे अलग होने का अभ्यास है। बहुत समय मिलता है, आज हम सफर में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, आते हैं, कितना समय मिलता है, सिर्फ हमारा अपना निजी पुरुषार्थ हो कि मुझे व्यर्थ बातें न सुननी है, न बोलनी है, न देखनी है, लग जाओगे रेस में। लेकिन इंटरेस्ट जो है बाहर के देखने सुनने और बोलने के, वो इस रेस से बाहर कर देते हैं। इसलिए पहला ध्यान है हम सब का कि हम इस रेस में हैं, इसलिए मुझे अपनी मंजिल को प्राप्त करना ही है। और दूसरा बाबा कहता है तुम युधिष्ठिर युद्ध के मैदान पर हो। योद्धा कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं हार न जाऊं, मेरी हार न हो जाए, ये मुझे मार न दे, मरने और मारने पर उतारू हो जाता है, विजय उसके सामने होती है, कुछ भी हो जाए, बाबा ने मुझे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया है, युद्ध के मैदान में खड़ा किया है, भिन्न भिन्न रूप के संस्कार स्वभाव माया के बहुत वैरायटी रूप, बहुत अनेक प्रकार की नई नई परीक्षाएं, जिनको कभी मन और चित्त में भी सोचा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, समर्पित जीवन में भी ऐसा हो सकता, वो परीक्षाएं भी बाबा कहता बच्चे आ सकती हैं। युद्ध का मैदान है ये, तुम योद्धे हो इस समय, इसलिए कभी भी योद्धा डरता नहीं है, दुश्मन से घबराता नहीं है, अपने को कम हाक लिया, मैं कम हूँ, यह बहादुर है, तो हार हो सकती है। लेकिन नहीं, मैं विजयी बन करके निकलूंगा, बाबा मेरे साथ है, भले कोई भी प्रकार की परीक्षा आ जाए, कोई भी प्रकार का पेपर संगठन के बीच में आ जाए, किसी भी प्रकार की माया आ जाए, कोई इंसल्ट ही क्यों न कर दे, क्योंकि मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत युद्ध के मैदान में सब बातें आएंगी। ऐसे समय में मैं विजयी योद्धा हूँ, एक अंदर की आंतरिक स्थिति अगर ये स्मृति में रहता है कि मैं युधिष्ठिर युद्ध के अंदर युद्ध के मैदान पर हूँ, इसलिए कोई भी स्वभाव संस्कार कभी भी इमर्ज हो जाए, कभी ये नहीं कहो इसका स्वभाव इसका संस्कार मैं तो सोचा भी नहीं था। बाबा कहता कई बार दूर से अच्छे लगते हैं और जब पास में आते हैं तो पता चलता है, ये भी ध्यान रखो कि तो बहुत अच्छे लगते थे इनके समय मैं तो सोचा भी नहीं था, तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे बहुत बोलने वाले हैं, बहुत अच्छे, पता नहीं इनके संस्कार भी ऐसे हैं। चलते चलते जब संगठन के बीच में परिवार के बीच में समीप आते हैं तो एक दूसरे के अंदर की आंतरिक भावनाओं का और उनकी स्थिति का पता पड़ता है, और फिर उसके बाद अगर हमारा भाव दृष्टिकोण हमारी भावनाएं अगर परिवर्तित हो गई तो हमारे संस्कार समीप आने की बजाय दूर चले जाएंगे। जब हम कहते हमारा एक परिवार है, हम एक परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार के सदस्य जब समीप आ गए तो समीप के बाद एक दूसरे की बात को सहन करना और समाना ये परिवार का एक अंदर की आंतरिक धारणा होनी चाहिए। कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। तो हम सभी योद्धे जब इस ईश्वरीय युद्ध के मैदान पर आ गए हैं तो मुझे विजयी बनकर के निकलना है, एक अंदर की निजी धारणा है, हार नहीं खानी, कुछ भी हो जाए, माया कितने भी घुसे लगा दे, कितना भी परेशान करे। कई बार साकार बाबा की मुरलियों में ऐसे आता है, अव्यक्त बाबा तो कहता बच्चे अभी युद्ध नहीं होनी चाहिए, लेकिन साकार बाबा के सामने बाबा कहता था बच्चे मैं आगे हूँ ना, मुझे पता चलता है कैसे कैसे विघ्न कैसे कैसे तूफान आते हैं, लेकिन जैसे मैं बाबा को याद करके पार कर लेता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी पार हो जाओ, बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो। पांच छाया मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जो आपको युद्ध के मैदान में सेफ रखेगी, क्योंकि योद्धा हमेशा कवच पहन करके रहता है, ऐसे नहीं रहता है, नहीं तो कहीं से भी अटैक कोई कर देगा। सेफ्टी के लिए कवच जरूरी है और बाबा ने हम सबको पांच कवच दिए। अगर इस पर आप विचार करेंगे, एक तो अपने शुद्ध संकल्प कवच का काम करते हैं, अगर हम ही अपने प्रति कोई नेगेटिव संकल्प कमजोर संकल्प अशुद्ध संकल्प करना शुरू कर दे, मैं हूं ही ऐसी, मैं ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं, क्या होगा, हमारा कवच ढीला हो गया, फिर कहीं ना कहीं से वार होगा, अटैक होगा। इसलिए बाबा कहता शुद्ध संकल्प करो, पॉजिटिव संकल्प करो, अच्छे अच्छे संकल्प करो, जिससे वो घेरा बन जाए लाइट का, और वो लाइट का घेरा जैसे जब डॉक्टर्स बताते हैं हमारे यहाँ कैड प्रोग्राम में सुनाते हैं कि कोई भी बीमारी पहले बाहर के लाइट के शरीर में आती है और वो मन के द्वारा आती है। मन कमजोर होता है, मन बीमार होता है, पहले लाइट के शरीर को डैमेज करता है और फिर शरीर के अंगों पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए हम मानसिक शुद्धता मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें कि हमारा मन कभी भी टेंशन में अशुद्ध न हो जाए, कोई नेगेटिव बात सोच करके परेशान न हो जाए जो हमारे शरीर के अनेक अंग खराब हो जाएं। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है कि अगर हम सभी योद्धे हैं तो हम युद्ध के मैदान में अपनी सेफ्टी के लिए एक रक्षा कवच तैयार करें, और वो रक्षा कवच है शुद्ध संकल्पों का, बहुत अच्छे संकल्प। बाबा इसीलिए मुरली सुना रहा है, इसीलिए पढ़ाई है, इसीलिए क्लासेज है, किस लिए है कि इनसे अच्छे अच्छे संकल्पों का निर्माण हो। अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तकें जो बाबा की हैं, ज्ञान की हैं, बहुत अच्छी हैं। ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ो जो आपका शुद्ध संकल्पों का घेरा टूट जाए। अच्छे अच्छे किताबें, अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छी मुरलियां बाबा की बहुत सारी आपके पास होनी चाहिए। समय निकलता है, मिलता है, पढ़ लो, आपको अच्छा चिंतन मिल जाएगा, अच्छे संकल्प मिल जाएंगे और उन शुद्ध संकल्पों में रमण करो। दूसरी है श्रीमत की मर्यादाओं का कवच। कभी भी ईश्वरीय मर्यादा को जो श्रीमत की लकीर बाबा ने खींच करके दी है, अगर इस युद्ध के मैदान में किसी भी आत्मा को विजयी बनना है तो अंगूठा भी, संकल्प भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालना। कुछ भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। रावण कितने भी भेष बदल करके आए, कैसे भी रूप उधर ले, साधु का भी अच्छे से अच्छा रूप बना के आए, लेकिन अगर आप मर्यादा की लकीर के अंदर हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर चल रहे हैं, तो कोई भी आपको शोक का अनुभव नहीं होगा, दुख का अनुभव नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो उसको चेक करो कि कहां पर किस रूप में संकल्प से, बोल से, कर्म से, संबंध से या व्यवहार से कहां पर मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, किस तरह से उस मर्यादा की लकीर को मैं आत्मा कहीं न कहीं लांग रही हूं, निकल रही हूं बाहर, इसलिए युद्ध के मैदान में मेरी हार हो रही और शोक का अनुभव हो रहा। ये दूसरा कवच है, इसको हम कहते हैं सेफ्टी के लिए श्रीमत की लकीर है। और तीसरी है सबके अंदर, बाबा कहता बच्चे ध्यान रखो, संगम युग पर हर आत्मा के दिल की दुआएं निकलनी चाहिए। दुआओं की एक बहुत बड़ी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को आप सहज पार कर सकते हो। कितना भी बड़ा पेपर आ जाए, शारीरिक आ जाए, मानसिक आ जाए, आर्थिक आ जाए, सामाजिक आ जाए, सरकार का आ जाए, किसी भी प्रकार का पेपर आ जाए, अगर आपने परिवार की दुआएं प्राप्त की हैं, अगर उनको सुख पहुंचाया है, उसने कभी न कभी आपको दिल से दुआ दी है, वो दुआएं आपको सदा मदद करती, ये कवच का काम करेंगे, युद्ध के मैदान में हार नहीं होने देंगे। ये कवच बना करके बाबा कहता बच्चे दुआएं जमा करो। क्या चाहिए, कितना इस बारी का है, 6 महीने के टाइम दिया, 3 महीने के टाइम दिया, दुआ ले लो। हर आत्मा मुझ आत्मा को दिल से दुआ दे, और उसका सबसे अच्छा साधन है उस आत्मा को मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से दुख की अनुभूति न हो, कुछ प्राप्ति हो, सुख मिले। तो जब दिल से हम आत्माओं की दुआएं लेते हैं, वो दुआएं हमारे लिए कवच बन जाती हैं। और चौथी सबसे बड़ी मदद जिस संगम युग पर कर रही है, जो हमारी निमित्त आत्माएं हैं, है परिवार ही, लेकिन जिनको बाबा ने गद्दी दी है, जिनको सीट दी है, निमित्त बनाया है, उनकी दुआएं, उनकी आशीर्वाद बहुत मदद करती है। अगर मैं आत्मा सदा आज्ञाकारी होकर के रही हूं, जो उम्मीदें उन्होंने रखी है उसको हाजी किया है, जैसे मम्मा के बारे में हम सब ने कहानियां पढ़ी हैं, जानते हैं कि मम्मा ने कभी भी बाबा के सामने ये नहीं कहा बाबा ये नहीं हो सकता है, कैसे होगा, कैसे शब्द भी यूज नहीं किया, बाबा के मुख से निकला माना हाजी करना है, हो जाएगा, नहीं होगा वो प्रश्न पहला नहीं है, करना है। बाबा ने कहा है मुझे करना है, बड़ों ने कहा है मुझे करना है, हमने तो अपने जीवन का एक लक्ष्य शुरू से यज्ञ में बनाया है कि दीदी दादी, अभी हमारी दादी जानकी हैं, दादी जी हैं, या दो जो मैं हमारे निमित्त बने हुए हैं, वो जो कह दे, मैं कभी ये नहीं कहता हूं ये नहीं हो सकता है, मुख से निकलता ही नहीं हो सकता है, इन्होंने कहा है बाबा शक्ति देगा, अपने आप हो जाएगा, कर लेंगे, क्यों नहीं होगा। इतना अंदर से विश्वास बैठ जाए उनका कि इसको जो काम दिया जाएगा ये परफेक्ट करके ही छोड़ेगा, विश्वास बैठ जाए, कराने वाला अपने आप कराएगा, साथी अपने आप बनेंगे, निमित्त आत्माएं अपने आप बनेंगे, सहयोग देने वाले अनेक निकल आएंगे, लेकिन मैं कम से कम बड़ों की दिल जीत लूं, उनकी दुआएं ले लूं, केवल हां जी करके। समय पर उन्होंने संकल्प ली दिया और मैंने कहा हां दादी हो जाएगा, कर लेंगे। अगर इतना निमित्त आत्माओं की दुआएं मुझ आत्मा ने ली है, तो मैं समझता हूं कोई बात आएगी उनकी दुआओं से बाबा की मदद मिल जाएगी और सहज पार हो जाएगी। और चौथी तो बाबा ही कहता है ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। पांचवी बात है कि पांचवी जो छत्र छाया है, जो बाबा के तहत सदा साथ रहनी चाहिए, वो बाबा की याद। याद का कवच तो कभी ढीला न हो। कभी कभी बाबा कह देता है बच्चे मुझे 5 मिनट भी याद नहीं करते, मुझे लगता है बाबा ऐसे क्यों कहता होगा, 5 मिनट भी याद नहीं करता, कौन बच्चा होगा 5 मिनट भी याद नहीं करता, 10 मिनट भी याद नहीं करता। जिसके दिल दिल रग रग में बाबा समाया है, बाबा ने इतनी अच्छी जीवन दी है, इतनी प्राप्तियां कराई हैं, इतना खजाना दिया है, इतनी श्रेष्ठ बुद्धि दी है, स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार से हर बच्चे को संपन्न बनाया है, फिर भी कोई कहे बाबा की 5 मिनट 10 मिनट याद रहती है, मैं कहता हूँ शायद ये कुछ और गलत बोला है। जिसको सब प्राप्तियां दी, जिसको इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, अगर उसकी याद नहीं रहेगी तो किसकी याद रहेगी। चलते फिरते उठते बैठते मेरा तो एक दूसरा न कोई, दिल में है कि बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया है। अगर सच्चाई है दिल के अंदर, प्यार है बाबा के प्रति, तो बाबा की सच्चाई और प्यार वाला बच्चा बाबा की छत्र छाया का सदा अनुभव करता है। ऐसे लगता है बाबा की छाया मेरे साथ साथ है। तो जैसे धूप में बरसात में निकलते हैं तो छतरी ले लेते हैं, ऐसे इस समय के दुनिया के मौसम के हिसाब से हम सबको ये छतरी लेकर के चलनी है बाबा की याद। निरंतर ऐसे लगे कि बाबा मेरे साथ साथ है, मैं कंबाइंड हूँ, अलग हूँ ही नहीं, आत्मा और परमात्मा दोनों बिंदु रूप में साथ हैं। कभी अनुभव होता है दोनों नैनों में दोनों बैठे हैं, कभी दोनों कंधों पर बैठे हैं, कभी बैक में खड़े हैं, सदा साथ साथ। अगर ये अनुभव हमारा प्रैक्टिकल हो जाए तो ये 5 रक्षा कवच मैं समझता हूँ हर योद्धे के साथ होने चाहिए, और वो योद्धा सदा विजयी रह सकता है जो इस कवच को पहन करके रहता है। नहीं कहीं ना कहीं ढीला है कवच, या नहीं पहना हुआ है, उतारा हुआ है, तो कोई न कोई प्रकार से माया कमजोरी के रूप में वार करती है और योद्धे को परास्त कर देती है। वो दिल से कष्ट हो जाता है, क्या करूं, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे आगे ही सारी परीक्षाएं हैं, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था इतने विघ्न आएंगे। अरे बाबा कहता विघ्न आएंगे, आने ही है, जरूर आएंगे। कभी कभी बाबा ऐसा कह देता बच्चे तुम्हारे सामने आएंगे, मैं तो जानबूझ कहता हूँ इसकी परीक्षा लो, माया को कहता हूँ जाओ बेटी परीक्षा लो, मेरी बेटी है माया, ऐसा कहता ना बाबा। तो इन विघ्नों से डरना और घबराना नहीं है, लेकिन अपने रक्षा कवच को ठीक ठीक पहन करके रहना है। 2 बातें मैं और सुनाना चाहता हूँ। तीसरी एक बात है, हम सभी छत्रधारी हैं। बाबा का बच्चा बनना माना छत्र बाबा पहना देता है। जैसे श्री कृष्ण को जन्म से ना छत्र दिखाया है, ताज दिखा देते, ताजधारी है। तो बाबा कहता जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बने हैं, मैंने उनको विश्व सेवा की छतरी पहना दी है। जहां पर भी हो, जिस कोने में भी हो, जिस भी स्थान पर रहते हो, सदा समझो मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिला, बैज लगा, सफेद ड्रेस पहनी, लोगों की नजरों में बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत ऊंचे हो, लोग उसी नजर से देखते हैं, ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। इनकी मान्यताएं, इनकी धारणाएं, इनकी विचारधाराएं बहुत शुद्ध और पवित्र है। इसलिए जो हम बाबा के बच्चे बने, हम सब के ऊपर छत्र आ गया जवाबदारी का, स्वयं को, स्वयं की स्थिति को ठीक रखने का, स्वयं जहां हम रह रहे हैं उस स्थान को ठीक रखो, शक्तिशाली रखने का, जिनकी निमित्त आत्मा है, जिनकी पालना के निमित्त बने हुए, उनकी जवाबदारी, साथ साथ यज्ञ हमारा इतना बड़ा बढ़ रहा है, विश्व का के स्टेज पर आ रहा है, यज्ञ की एक कोने की छोटी सी भी भूल सारे विश्व में ऐसे फैलती है सारा यज्ञ बदनाम हो जाता है। इसलिए हम सबको बाबा ने छत्र पहनाया है कि कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की, अपनी और अपने परिवार की पालना के, उसको आगे बढ़ाने के निमित्त आत्मा हूँ, ये बाबा ने मुझे जवाबदारी दी। इसलिए कुछ भी मुझे करना पड़े, कितना भी त्याग करना पड़े, चाहे स्थान का त्याग करना पड़े, चाहे साथियों का त्याग करना पड़े, ये नहीं मेरा स्थान है, मेरी गीता पाठशाला यहाँ है, तेरी यहाँ, क्यों टक्कर में जाते, क्या चाहिए तुमको? बाबा को दो जीवन, बाबा जो करा ले, जैसा करा ले, मेरा तेरा इधर उधर क्यों लफड़ों में फंसे, क्या चाहिए? ये बाबा का नाम बाला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? इसलिए बहुत जरूरी यहाँ पर बात आ जाती है कि बाबा ने मुझे छत्र दिया है बाबा का नाम बाला करने के, मैं बाबा का नाम बाला करूं अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपनी सेवा से, न कि कोई भी आत्मा ये कहे कि ये ब्रह्मा कुमारियां भी ज्ञान तो ये देती है, लड़ रहे हैं, देखो ओम शांति का मंत्र पढ़ाते हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, इतना ऊंचा ज्ञान और इनकी चलन कैसे, इनका व्यवहार कैसा। यहां भी दो पार्टियां दिखाई देती, यहां भी कोई अलग अलग, कोई पूछने वाला नहीं इनको। अगर इस प्रकार का वायुमंडल किसी भी स्थान पर बनता है तो बाबा कहता है बच्चों को अपने छत्र का ध्यान नहीं है। बहुत ऊंचा छत्र मुझ बाबा ने पहनाया है, हम सब जवाबदार आत्माएं हैं। और चौथी बात बाबा कहता है सदा समझो मैं महान आत्मा हूं। महानता उसमें है जहां निर्माणता है। महान उसको कहा जाता है जो निर्माण है, झुकता है। तो हम सभी बाबा के बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, अपने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने के लिए इन चार बातों का ध्यान और पांच कवच पहन करके रहें। ओम शांति।
कर ले।